उपनिषद के प्रसंग में हम आज 7th मंत्र की चर्चा करेंगे। मेरे साथ मिलकर के बोलिए, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत् विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः कः एकत्वमनुपश्यतः। जो विजानत है, विज्ञानी है, जानने वाला है, उसके लिए जब सारे प्राणी संसार में कुछ भी बना हुआ होता है, कोई भी भूत हो, कोई भी एग्जिस्टेंस हो, जब वो सबको खुद में देखने लग जाता है, फिर ना कोई शोक होता है, ना कोई अटैचमेंट है, ना इन्फैचुएशन है और डिल्यूजन है। जब इनमें से कोई होगा ही नहीं, ना इन्फैचुएशन या डिल्यूजन या अटैचमेंट, फिर शोक भी कहां से होगा, कोई ग्रीफ भी कहां से होगा। जो एकत्व को देखता हो, जो वो उस वननेस को इस यूनिवर्स में, उस वननेस को देखने वाले व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। दुखी क्यों नहीं होता, कंडीशन क्या है, क्योंकि वो अटैच्ड नहीं होता, उसके अंदर कोई इन्फैचुएशन नहीं है, कोई डिल्यूजन नहीं है या कोई अटैचमेंट नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि वो सब में खुद को और खुद में सबको देखता, वो एक दूसरे की कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में चलते हैं। पिछले बार हमने चर्चा की थी, ठीक इसका पहला मंत्र इसी से रिलेटेड है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवान उपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सति। वहां कहा कि जो सब में खुद को देखता है या खुद में सबको देखता है, फिर वो नफरत नहीं करता। और हमने जानने की कोशिश की, ये नफरत और प्यार, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। नफरत एक गेस्ट धर्म है, अतिथि धर्म है, जिसको हम नॉर्मली प्यार कहते हैं, वो खुद से ही प्यार करना होता है। जितना मैं खुद से प्यार करता हूं, उतने मुझे खुश करने वाले वो हर व्यक्ति से मैं प्यार करने लगता हूं, और जहां जहां से मेरी खुशी कम होने लगती है, वो प्यार भी कम होने लगता है। वो फैमिली हो, वो रिलेटिव्स हो, वो फ्रेंड्स हो, वो कल्चर हो, रिलीजन, कुछ भी, जहां मेरे ईगो को, मेरे मन को सेटिस्फाई जहां से मिलता हो, वहां प्रेम। वो एक कंडीशनल लव होता है जिसे हम करते हैं, और एक जो नेचुरल डिवाइन लव है, जो हमारा नेचर है, वो नफरत से ढका हुआ होता है। नफरत वो जो कंडीशनल लव का दूसरा साइड है, कॉइन की दूसरे साइड है। प्यार करते हैं और कल आप नफरत करने लग जाते हैं। नफरत इसीलिए करते हैं कि भाई कल तो तू प्यार कह रहा था, मैं प्यार करता हूं, छह महीने में, दो साल में क्या होगा कि आप तलाक तक पहुंच गए, सेपरेशन तक पहुंच गए, या गालियां देने लग गए, फिर दुनिया भर के बातें सुनाने लग गए। कुछ नहीं हुआ सिवाय इतना कि अब मुझसे उसे खुशी नहीं मिलती, वो जो कुछ कर रही है या करता है, वो मुझे खुशी नहीं मिलती है। That's it। आज वो कहता है कि शोक और मोह, ग्रीफ और अटैचमेंट, ये दोनों उसमें नहीं होता। ये दोनों कोई अलग अलग चीज नहीं है, एक कॉज है, एक इफेक्ट है। देवियों सज्जनों, जिसको नॉर्मल भाषा में हम, जिसको बड़े नॉलेजेबल लोग कहते हैं, स्कॉलर कहते हैं, ज्ञानी आदमी, हमारे जो उपनिषद वगैरह के शास्त्रों में, उनको ज्ञानी नहीं कहा जाता, जिसको नॉर्मली हम ज्ञानी कहते हैं। कोई किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, प्रोफेसर है, एक्सपर्ट है, इंटेलिजेंट है। ज्ञानी सिर्फ वैदिक शास्त्रों में ज्ञानी का सिंपल मतलब है जो रियलाइज करता हो चीजों को। किताबें पढ़ के, न्यूज देख के, लोगों से सुन के जो ज्ञान आता है, वो इन्फॉर्मेशन है, उसकी भी जरूरत है, ऐसा नहीं कि वो कोई खराब चीज है। और जिसके पास जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, आजकल हम उसको कहते हैं कि ये बड़ा ज्ञानी आदमी है। आप पूछो भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो आपको घंटों समझा देगा कैसे बनता है, कहाँ है, किस साइंटिस्ट ने क्या कहा, कब से हुआ। आप पूछो धर्म क्या है, वो आपको घंटों समझा देगा धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कौन से शास्त्र में क्या लिखा है। आप पूछो आत्मा क्या है, घंटों समझा देगा। समझा देना अलग चीज है, क्योंकि उसने खुद शास्त्रों को पढ़ा है, सुना है, जिस जिस विषय में हमारी एक्सपर्टीज है। आप बैठे हुए हैं, आप में से ज्यादातर लोग किसी ना किसी विषय में एक्सपर्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, अपने अपने विषय में, कोई पॉलिटिशियन है। और आपका ज्ञान, क्योंकि मोस्टली हमारे यहां बड़े अच्छे डिग्निफाइड ऑडियंस होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, इसमें से ज्यादातर लोग होंगे जो अपने अपने विषय में बहुत ज्यादा ज्ञानी है। मुझे एक पर्टिकुलर चीजों का कुछ ज्ञान है, इसी तरह आप अपने अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज्ञानी है। पर हमारे में से किसी को उपनिषद या वैदिक साहित्य ज्ञानी नहीं कहता। एक्सपर्ट्स हैं, आपने काफी सारे सूचनाएं इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रखा है, आपकी वैल्यू ज्यादा है मार्केट में। अब ज्ञानी और एक्सपर्ट में फर्क उतना ही समझिए, बिल्कुल मान लीजिए कोई किसी यूनिवर्सिटी में स्विमिंग का प्रोफेसर है, आप इसको सेमिनार में बुलाएं तो आपको घंटों बोलेगा कितने तरह के स्विमिंग होते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, कब से शुरू हुई, कैसे चेंजेस आए, क्या क्या टेक्नोलॉजीज आए, वो सब सुनाएगा, आप मेस्मराइज्ड होंगे। और एक दिन उस प्रोफेसर का सेमिनार मान लीजिए किसी कोस्टल एरिया में हो, समुन्द्र के किनारे, और शाम को घूमने चले, और आपको गलती से लगा ये स्विमिंग का बड़ा अच्छा प्रोफेसर है, पीछे से मजाक मजाक में आपने समुन्द्र में धक्का दे दिया, बोला मुझे तो तैरना आता ही नहीं है, बचाओ बचाओ बचाओ। और बेचारा जो बचाने गया वो एक इलिटरेट है, मछुआरा है, वो फट से कूदता है समुन्द्र में, हजारों टेक्निक अपना करके उसको बचा के ले आता है। उस मछुआरे ने पूछा सब आप कौन है, बोला मैं स्विमिंग का एक्सपर्ट हूं। अच्छा, समझ में आ गया होगा, ज्ञानी है एक ज्ञात जो रियलाइज करता है, वो मछुआरा जिसको ज्यादा कुछ पता नहीं है, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ नहीं पता, बस वो तैरना आप समुन्द्र में फेंक दो, तालाब में फेंक दो, तैरेगा। दूसरा पानी में कभी पैर नहीं रखा पर तैरने के बारे में सब कुछ जानता है, समवन हु नोज अबाउट थिंग्स एंड समवन हु नोज दैट थिंग्स, दैट्स द डिफरेंट बिटवीन ए ज्ञानी एंड एक्सपर्ट, जो रियलाइज करता है। पर अगर सिर्फ हमने काफी सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है, अब कहें तो संस्कृत लिटरेचर में ऐसे कहते हैं जैसे तोता होता है, तोता जानते हैं, पैरट, बाजार में एक आदमी तोते ला करके बेचता था, चिड़ियों को बेचता था, तो एक भला आदमी को बड़ा बुरा लगा। आजकल काफी सारे लाइफ सपोर्टर्स होते हैं जो प्रो लाइफ मूवमेंट चलाते हैं, पशु पक्षियों को मारना नहीं, हत्यार नहीं करना, वेगन बनते हैं। उसी तरह ये हमेशा से हर इंसान के, बहुत सारे लोगों के अंदर अच्छा ही बुराई भाव होता है, तो उसके ये बुरा लगता था, कोई चिड़ियों को पकड़ के जंगल से लाता है, बाजार में बेचता है, उनको पिंजरे में बंद करके रखता है। तो उसने देखा एक बहेलिया जो चिड़ियों को पकड़ के बेचता है, तो उसको पूछ, उसके पास काफी सारे तोते थे, तो उसने वो सब तोतों को खरीद लिया, खरीद के घर लिया, बोला मैं उनको ट्रेंड करूंगा कि ये किसी के चक्कर में ना फंसे। तोतों में एबिलिटी होती है कि वो रट लेते हैं थोड़ा बहुत, तो उसने उनको सिखाया, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, फंसना नहीं फंसना नहीं, महीनों, छह महीने, एक साल, डेढ़ साल में सब तोतों ने उसके घर में रट लिया, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, फंसना नहीं फंसना नहीं। अब उस भला आदमी को लगा आई एम डन, अब हो गया, अब ये तोते कभी फंसेंगे नहीं है। उन्होंने लिया उसको, जंगल में छोड़ दिया। तोते उड़ के चले गए बड़े प्यार से गाना गाते हुए। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। ऊपर देखा गाना गाते हुए, दाने डाले हुए थे, जाल बिछे हुए थे, और नीचे आए गाना गाते हुए। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। दाना चुगने लगे और जाल में फंसे, अगेन जाल में फंस के सेम गाना गा रहे हैं। तोता पकड़ने वाला शिकारी दूर से आया, देखा तोते गाना गा रहे हैं और बड़े ऐसी गाना गा रहे हैं। शिकारी आएगा वो डर गया, बोले कमाल है, आज तो कुछ धंधा होगा ही नहीं। पर जब पेड़ के पीछे छुप के देखा, वो ऑलरेडी जाल में फंस चुके थे, ट्रैप्ड हो चुके थे। जालों से तोतों को निकाला, बाजार में जाकर बेचा। देवियों सज्जनों, अब उसके पास दो तरह के तोते हैं। ये तोते $5 के हैं, क्यों? इलिटरेट हैं, कुछ नहीं आता है। ये एजुकेटेड हैं, $50 का है। दिखाओ भाई एजुकेशन, दिखाया। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। जिसको हम सो कर ले एजुकेशन कहते हैं, जो हमारे काफी सारा इंफॉर्मेशन हमारे अंदर भरता है, वो सिर्फ एक ही काम करता है, हमारा मार्केट वैल्यू बढ़ा देता है। कल आपको दो लोग मानते थे, या 200 लोग मानेंगे। कल आप 2 रुपए कमाते थे, आज 2000 कमाएंगे। तो मार्केट वैल्यू जिससे बढ़ता है, उसको वैदिक शास्त्र ज्ञानी नहीं कहते हैं। वो भी एक अलग विधा है, आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। स्वाध्याय जरूरी होता है, द फर्स्ट स्टेप होता है आगे बढ़ने के लिए। पर स्वाध्याय में ही रुक गए, शास्त्र पढ़ना पढ़ने में ही रुक गए, आगे नहीं बढ़े। फायदा है, वैल्यू बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगा, पर और कुछ नहीं होगा। वो उपनिषद उनकी चर्चा नहीं करता, वेद उसकी चर्चा नहीं करता, शास्त्र उसकी चर्चा नहीं करते। कहते जो विजानता, जो ये रियलाइज कर लिया कि दुनिया में जो कुछ भी है उनमें भी वही है जो मुझ में है, और जो मुझ में है सब में वही है। मुझे अगर दर्द होता है तो सबको दर्द होता होगा, मुझे अगर भूख लगता है तो सभी प्राणियों को भूख लगता होगा, मुझे अगर चिल्लाने पर बुरा लगता है तो सबको बुरा लगता होगा, मुझे कोई प्यार से बोलने से अच्छा लगता है तो सबको अच्छा लगता होगा। सब में वही देखे जो खुद में देखे, खुद में वही देखे जो सब में देखे। अगर ये कोई रियलाइज कर लिया उस तत्व को, उस वननेस को, फायदा क्या होगा? ना कोई मोह होगा, ना कोई शोक होगा। तो शास्त्रों की भाषा में ज्ञानी वही है, एक वाइज पर्सन वही है, एक स्मार्ट वही है, जो जिसको दुख नहीं होता हो या कम से कम होता हो। दुख ना होने का शर्त यही है कि जिसमें अटैचमेंट ना हो, जिसमें डिल्यूजन कम हो, और कोई रास्ता नहीं है। पर मजेदार बात यह है कि शोक, तत्र को मोहक का शोक, शोक या जो ग्रीफ है, वो अटैचमेंट का सगा भाई है, सिबलिंग है, रिलेटिव है। अच्छा, वो ऐसे रिलेटेड है कि एक दूसरे के बिना नहीं रहते हैं, वो अनअवॉइडेबल पार्ट्स ऑफ द सेम थिंग है। आप अगर किसी चीज से अटैच्ड हैं, यकीन मानिए वहीं से ही आपको दुख मिलेगा। बच्चों से बहुत अटैच्ड हैं तो आपके ज्यादातर दुख बच्चों से ही मिलेगा। बच्चों को बुखार हुआ तो आपको दुख, आप परेशान हो। बच्चों की जब न लगी तो आपको परेशानी है। बच्चों को ये हो गया तो आप परेशान हो। बच्चों ने ठीक से बात नहीं की तो आप परेशान हो। तो पूरी दुखों का जो आपका जो पेरिफेरी है वो बच्चों के आसपास घूमेगा दुखों का। आप अगर घर से बहुत अटैच्ड हैं तो घर में थोड़ा सा कहीं दाग लग गया तो आप दुखी हो, दीवार में कलर चेंज हो गया तो आप दुखी हो। जहां जहां से अटैचमेंट जितना ज्यादा दुख की मात्रा भी उतनी ही मात्रा, जहां जितना कम उतना। इसका कभी मिसअंडरस्टैंड मत करिए कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि आप घर मत बनाओ, बच्चों को प्यार मत करो, दुनियादारी मत करो, पैसा मत कमाओ। नहीं, ऐसा कभी बोला ही नहीं, किसी ने नहीं बोला, तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। और उल्टा कहते हैं खूब कमाओ, खूब खर्च करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दुनिया को भोगने से या कमाने से दुख नहीं होता, दुख होता है उसे अटैच होने से। तो जिस चीज से आप जितना ज्यादा अटैच्ड होंगे, जब वो नष्ट होगा, कमजोर होगा, आपसे दूर होने की लगेगा, तो दुख होगा। स्वाभाविक है, बिल्कुल नेचुरल है, कोई ऐसा नहीं कि कोई इसके लिए रॉकेट साइंस की समझने की जरूरत है। और इसका अपोजिट, जिसमें कोई अटैचमेंट नहीं है, जीरो अटैचमेंट, लिविंग इन द सेम हाउस, डूइंग द सेम वर्क बट नो अटैचमेंट, उसको कभी दुख ही नहीं होगा। एक माता जी मिली, बोला आपको पता है मेरे पतिदेव से मैं बड़ा चिढ़ती रहती हूं, क्यों? अब किसी के घर में कोई बीमार होता है, कोई मर जाता है, कुछ होते हैं, ये जाते हैं, ये इनका रिएक्शन बिल्कुल अजीब होता है, कुछ नहीं होता है। भाई थोड़ा दुखी दिखना चाहिए, कम से कम हो ना हो तो दिखाओ तो आप दुखी हो, कभी नहीं दुखी दिखाते। मैं कितने बार समझाया, बुझाया, वो किया नहीं, बिल्कुल। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसा तो लाखों करोड़ों लोग कोशिश करते हैं ये पाने के लिए कि हम सुख दुख अच्छी चीज और बुरे चीजों में बराबर हो जाएं, होता नहीं है। करोड़ों लोग कोशिश करते हैं, सालों से कोशिश करते हैं, हो ही नहीं पा रहा है। दुनिया भर के एक्सक्यूज देते हैं, क्या करें। अब तुम्हारे पतिदेव में अगर ये नेचुरली है, यू हैव टू बी प्राउड फॉर हिम। पर समझ नहीं था ना, इल्यूशन है। दुखी होना जरूरी नहीं होता है, दुख तो अटैचमेंट के कारण होता है। मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं जो थोड़ा आर्टिफिशियल दुख दिखाते हैं, मैं उसकी बात तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो बिल्कुल उनकी बात कर रहा हूं जो दिल से दुखी होते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा बताने लायक चीज होते हैं ना। आजकल बहुत चीजें हम मतलब सिर्फ इसीलिए करते हैं कि दिखाना है, दुख हो ना हो मुंह लटका ही देते हैं, खुशी हो ना हो ना दिखाई देते हैं। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो जो जेन्युइन दुखी है, जेन्युइन सुखी है। अगर आप अटैच नहीं हो, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको कभी दुखी कर दे, हो ही नहीं सकता। अगर लाइफ में अच्छा, जितनी चीजों से आप अटैच्ड हैं, पैसे से हैं, कपड़ों से हैं, नाम से हैं, बाजार से हैं, जिससे गाड़ी से हैं, जिन जिन चीजों से अटैच्ड हैं, यकीन मानिए उतने ज्यादा दुख पाने का सोर्सेस हमने डोर खुला रखा है। कहेंगे हम तो बेचारे आम आदमी है, हमसे तो कंट्रोल नहीं, कोई बात नहीं। मतलब शास्त्र नहीं कहते हैं कि सब रातों रात सब कोई ऐसा ही बन जाओ, पर अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करें, कुछ चीजों से अटैचमेंट हटाएं, देखेंगे कुछ चीजों से दुख कम होगा। रात की नींद दो चार दिन थोड़ा ज्यादा और अच्छी आएगी, स्ट्रेस का लेवल कम होने लगेगा। मजेदार बात है, देखिए इट्स ऑल अबाउट माइंड, ये सब माइंड गेम होता है, मन का खेल है। ये सब अटैचमेंट भी मन में, शोक भी मन में, बाजार से दुनिया से उसका कम रिश्ता है। आप किस टाइप के स्टेट ऑफ माइंड में है, उसी तरह आप रिएक्ट करते हैं दुनिया में जो होता है। ये माइंड की अपनी खेल है। किसी से आप अटैच्ड हैं, वो नहीं रहा, आपका कोई पेट डॉग है, कोई प्यारा इंसान है, आपके घर का मेंबर, कोई फ्रेंड है, कोई घर है, कोई गाड़ी है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे लोग नई गाड़ी लाते हैं और वो एक दो चार एक हफ्ते में कहीं ठोक जाता है तो कितना दुख आपको होता होगा। मान लीजिए आपने नई गाड़ी खरीदी हो है? और एक महीने के अंदर नई नई गाड़ी खरीदते हैं तो बड़ा साफ सुथरा रखते हैं, चमका के रखते हैं, और महीने के अंदर कहीं ठोक गया हो, बड़ा दुख होता है। और वही गाड़ी 8-10 साल पुराना हो जाए, वो ठोकने पर थोड़ा कम दुख होता है, क्योंकि अब अटैचमेंट कम होता गया है, दूसरी नई गाड़ी बाजार में देखते रहते हैं ना। तो मन क्या करता है, जब भी हमारे से कोई अटैच चीज छूटने लगता है या छूट जाता है, हम उस शोक को, उस ग्रीफ को कम करने के लिए एक दूसरा अटैचमेंट ढूंढते हैं। अगर नहीं मिलता है या थोड़ा लेजी है तो फिर हम शराब पीने लगते हैं, ड्रग लेने लगते हैं, क्योंकि आसान होता है उन चीजों से माइंड को भटकाने में। थोड़ा रिलेटिवली स्मार्टर लोग दूसरे लोग ढूंढते हैं, तलाक हो गया, दूसरा ढूंढने की यात्रा शुरू हो गई। कोई फ्रेंड दूर चला गया या आप एक शहर से दूसरे शहर में आ गए, सारे फ्रेंड सर्कल छूट गया, तो नए फ्रेंड्स बनाने लगे। दुख तब भी हुआ जब आप फ्रेंड्स को सब छोड़कर आए, जब माँ बाप सिटी या देश बदलते हैं तो उनके जो टीनेजर बच्चे होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उनको सबसे ज्यादा दुख होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उनको फ्रेंड्स को मिस करते हैं। बड़ों के लिए तो अटैचमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हो गए, पैसा है, नाम है, कंपनी है, पोस्ट है, वो सारे अटैचमेंट। बच्चों के लिए तो लिमिटेड है, फ्रेंड्स है, स्कूल है, दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं, इसलिए ज्यादा मिस करते हैं फ्रेंड्स को। तो हम नए नए ऑब्जेक्ट को हमारा माइंड ढूंढता है अटैच्ड होने के लिए और उस ग्रीफ से छुटकारा पाने के लिए। पर प्रॉब्लम है कि फिर दूसरे से अटैच्ड हो जाते हैं और फिर दुख का और एक डोर खोल लेते हैं। पर जो विजानत, जो ज्ञानी है, विज्ञानी है, वो पूरी तरह अटैचमेंट को ही प्रॉब्लम का जड़ समझता है और उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है। इंटरेस्टिंगली जो अटैचमेंट है उसका एक बड़ा स्पेसिफिक नेचर है, और वो नेचर है कि वो हमेशा एक्सक्लूसिव होता है। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं सारे दुनिया से प्यार करता हूं, हो ही नहीं सकता। फिर तो यह दो तरीके से हो सकता है, या तो आप बिल्कुल आत्मज्ञानी हो चुके हैं, तब आप जैसे अभी मंत्र ने बताया, सब में खुद को, खुद में सब को, या आप थोड़ा बहुत किसी के अल्कोहल या ड्रग के कंटेंट में है। बाकी बीच के लोगों को सवाल ही नहीं उठता, आप कहेंगे कि मैं सारी दुनिया से प्यार करता हूं, दुनिया के मतलब मैं अपने बच्चों से उतना ही प्यार करता हूं जितने पड़ोसी के बच्चे से, जितना दुश्मन के बच्चे से, जितने काले से, गोरे से, ब्राउन से, इंडियन से, अफ्रीकन से, अमेरिकन से, जापानी, सबसे उतना ही प्यार करता हूं। एक्सक्लूसिव होता है, आप एक पर्टिकुलर गाड़ी में अटैच्ड होते हैं। सब गाड़ियों से आपको, कोई भी गाड़ी आपके लिए चलेगी फिर अटैचमेंट तो होगा ही नहीं। कोई भी खाना खा लो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो अटैचमेंट होगा ही नहीं। आप एक पर्टिकुलर खाने के साथ अटैच्ड होते हैं। मान लीजिए मिठाई में आपको रसमलाई पसंद है, आज मन करता है खाने के लिए नहीं बना तो भी आप दुखी हैं। लेकर आए बाजार से 5-7 लाए और बच्चे घर में थे या कोई भी फ्रेंड्स आ गए, खा गए, आपके लिए नहीं बचा तो भी आप दुखी, कम खाए तो भी दुखी। ऐसा नहीं कि चलो भाई लड्डू है खा लो, नहीं, खा तो लेंगे पर वो जो सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ ना, आपके अटैचमेंट वो पर्टिकुलर रस मलाई से था, दैट्स इट। अटैचमेंट कहने का अर्थ है वो एक्सक्लूसिव होता है। आप अगर कोई भी खाना खाकर संतुष्ट है आप कभी दुखी होंगे ही नहीं। फिर तो आपको ब्रेड मिल जाए, आपको चावल मिल जाए, सूखा चावल मिले, सूखी रोटी मिले, अच्छी रोटी मिले, वो दुनिया का कहीं भी कोई भी खाना पेट भरने के लिए आपको मिल जाए तो आप खुश हैं। फिर दुख होगा ही क्यों? दुख कब होता है? मुझे पर्टिकुलर खाना नहीं मिला, मैं उससे आदि हूं, अटैच्ड हूं। आप किसी से कहते हैं कि मैं इसी से प्यार करता हूं, ये मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, जिसको मिस आप करते हैं वो ना होने पर, जिसको प्रॉब्लम होने पर आपको आपको भी दुख होता है, इसका मतलब आप बाकियों से नहीं कर सकते, करेंगे भी उतना उस लेवल पर नहीं करेंगे। इट शुड बी एक्सक्लूसिव इफ यू आर अटैच्ड विथ समवन। अटैचमेंट लव का एक दूसरा साइड है। पर ये मंत्र कहता है कि जब आपके अंदर ये आ जाएगा ना, ऑल आर माइन, सब कुछ मेरा है, फिर वो इंक्लूसिव हो जाएगा और फिर दुख होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे ही अटैचमेंट की डिग्री डिक्रीज करता है, कम होने लगता है, तो आपका सर्कल बड़ा होने लगेगा। आप अगर बहुत ज्यादा फैमिली पर्सन है, मतलब आपको फैमिली में ही सबसे ज्यादा आनंद आता है, तो आपकी सर्कल फैमिली में रहेगा, उन्हीं के सुख में दुख में अच्छे में बुरे में घिरे रहेंगे, एंजॉय करेंगे, खुशी होगी दुख होगा। थोड़ा दायरा बढ़ाया अपने नेबरहुड में और लोगों में, वैसे ही व्यवहार करने लगे फैमिली के तरह नहीं तो थोड़ा बहुत 19-20 की तरह। अब आपकी अटैचमेंट का दायरा जब बढ़ने लगता है, दुख की जो क्वालिटी है उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी कम होगा। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो आते हैं कभी कभी काउंसलिंग के लिए। एक व्यक्ति ने बताया कि उसके ऑफिस में कोई लेडी काम करती है तो डिप्रेशन में, ठीक है, जॉब के कारण फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है और इतने डिप्रेशन में कभी कभी सुइसाइड की भी दौरा पड़ता है और भी कुछ होता है। तो मैंने कहा उसको थोड़ा बाहर उसको बोलो जाएं, फ्रेंड सर्कल में मिले जुले। उसका कोई फ्रेंड ही नहीं है, कभी बनाया नहीं फ्रेंड्स, फैमिली में किसी से कभी रिश्ता रहा ही नहीं है, चाचा है, चाची है, फूफा है, मामा है, सब है, कभी बनाया नहीं है। और जब आप पूरी उसकी बैकग्राउंड समझते हैं तो समझ में आता है इट्स नेचुरल, उसके भयंकर डिप्रेशन जाने के लिए सारे ऑप्शन खुले हैं। वो सिर्फ दो चार लोगों से अटैच था, अपनी जॉब, पैसा और अपने दो चार लोग। जब उन्हीं में से कुछ गड़बड़ होता है तो उसकी जो इंटेंसिटी, अब जो डिप्रेशन है, जो दुख है, वो बहुत ज्यादा है। और जब आप अपने सर्कल को लंबा ज्यादा बड़ा करने लगते हैं, वही दुख आपको कम हिट करेगा। और अगर आप उपनिषद की भाषा में उस लेवल पर पहुंच गए, सब में खुद को और खुद में सबको देखने लगे, अब ना कोई आपका अपना है ना कोई पराया है, जब भी अपना होगा तब कोई ना कोई पराया तो जरूर होगा, अब सब अपने हैं, फिर ना कोई, क्योंकि कोई अटैचमेंट रहेगा ही नहीं, तो नहीं रहेगा तो फिर दुख भी नहीं रहेगा। तो अटैचमेंट जब सिकुड़ता है तो दुख की इंटेंसिटी भी बढ़ती है, और जब ये बढ़ता है, अगर कोई सोचे कि मैं अटैचमेंट को कम नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता, उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन है कि वो बहुत सारी बहुत उसकी सर्कल को बड़ा कर दे। अगर 5 लोगों से प्यार करता है तो 50 लोगों से करने लगे, 500 लोगों से करने लगे, तो अटैचमेंट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो दुख की भी इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि नेचुरली अटैचमेंट ऑलवेज इज लिमिटेड, इट नीड्स ए लिमिटेड स्पेस, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। सो देयर इज नथिंग लिमिटलेस अटैचमेंट। जैसे ही आप लिमिटलेस हो जाएंगे, फिर आपके अटैचमेंट नाम का कोई चीज बचेगा ही नहीं। मान लीजिए अभी अभी इंडोनेशिया में सुनामी आई है, तो करीब करीब 500-600 लोग अभी तक मरे हैं और भी मरने की संख्या बढ़ेगी। इसी तरह हजारों लोग घायल हुए हैं, लाखों लोगों के घर बार गया है। हर साल कहीं ना कहीं आता है, भूकंप आता है, सुनामी आती है और भी बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज आती है। आपने सुना, आपको कितना दुख हुआ, इसकी इंटेंसिटी कितनी हुई, जितनी भी हुई। मान लीजिए वही कैलमिटी अमेरिका में होता जहां आप रहते हैं, यहां आपको पता लगता 400 लोग मरे, स्कूल में बंदूक चलता है 10-20 लोग मरते हैं, पूरे देश शोक में होता है। तो आपको पता चला अमेरिका में भी सुनामी आया और 450 लोग यहां मरे, कितना दुख होगा इंडोनेशिया के कंपैरिजन। और आपको पता चला उसी समय टेक्सास में भी प्रॉब्लम है और जिसके कारण 40-50 लोग मरे, आपको सबसे ज्यादा दुख किसके लिए होगा, टेक्सास में मरे हुए 40-50 लोगों के लिए, इंस्टेड ऑफ 400-500 जो अमेरिका में मरे, या 4,000-5,000 अगर पूरे दुनिया में मरे हो। और पता चला ह्यूस्टन में 40 मरे, दुख का दायरा ज्यादा होगा। और आपको पता चला आपके नेबरहुड में 4 गए, दुख ज्यादा और ज्यादा होगा। पता चला आपके रिलेटिव में से कोई एक उनमें था, तो दुख का लेवल और ज्यादा होगा। और इस दुख को फील करते करते, और आपका ही एक हाथ कहीं कट गया, अंगुली कट गई, फिर क्या होगा, सारा दुख आपके हाथ या उसे अंगुली के चारों तरफ रहेगा, ना वो 4, ना वो 40, ना वो 400, ना वो 4,000, ना 4,00,000। क्योंकि जिससे जितना ज्यादा आप अटैच में आपकी, चलो अंगुली हाथ तो थोड़ा ज्यादा हैवी हो जाता, आपका घर ही टूट गया, कोई प्राण हानि नहीं हुई, कोई मरा नहीं है, सिर्फ घर ही नष्ट हो गया। तो जितना अटैचमेंट का दायरा कम होता है, उतना शोक की, ग्रीफ की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है। आप अगर लिमिटलेस अटैचमेंट और लव में आ गए कि आप सबसे प्यार करते, पूरे देश से प्यार करते हैं, आपके देखेंगे आपके प्यार की इंटेंसिटी भी कम होगी अटैचमेंट की, तो नेचुरली दुख की इंटेंसिटी भी कम होगी। तो जब अटैचमेंट लिमिटलेस हो जाता है, लव जब अपना बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है, फिर वो लव या अटैचमेंट नहीं रहता है, इट डिसअपीयर्स, वहां स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, वहां फिर शरीर का खेल नहीं रहता, फिर माइंड का खेल नहीं रहता, फिर वो आत्मा का खेल होता है। जब आप सकल जगत में, सारे होल वर्ल्ड में आप अपने आप को देखते हैं और सबको खुद के अंदर, फिर आप वहां आत्मा के लेवल पर बात करते हैं। वो जो प्रेम है वो आपका नेचर होगा, स्वभाव होगा, उसमें वो डिविनिटी होगी। इसीलिए अटैचमेंट क्या है, मैं और मेरा का विस्तार है, एक्सपेंशन ऑफ माइनेस। जहां जितना मेरापन बढ़ता जाएगा, उतना दुख का दायरा, दुख कम होता जाएगा। जितना मेरा सिमरता जाएगा, दुख बढ़ता जाएगा। एक व्यक्ति समुद्र में बोटिंग कर रहे थे, कुछ बोट डूब गया, शिप में सैकड़ों लोग थे, सब मर गए, एक आधा लोग बच गए। तो उसने घर में आया, पूजा पाठ करके भगवान को दुनिया भर थैंक्स कहा, इसलिए नहीं कहा कि मैं बच गया, इसलिए कि सब मर गए, मैं अकेला बच गया। भगवान ज्यादा के प्रति ग्रेटफुल आ जाते हो जाते हम, जब सबका नुकसान हो जाए और हम ही बच जाएं, हमारी खुशी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हमसे खुद ज्यादा अटैच्ड हैं। मेरे अलावा दूसरा बच जाए उसके लिए भी मैं सेलिब्रेट करूंगा, फर्स्ट सेलिब्रेशन तो मेरा अपने लिए होता है। तो बृहदारण्यक के उपनिषद में इसी को थोड़ा क्लासिकल वे में याज्ञवल्क्य और मैत्रेय के संवाद में आता है। तो उनकी पत्नी को याज्ञवल्क्य कहते हैं कि भाई मैं मुझे वानप्रस्थ लेना है, तुम भी अपनी मर्जी से जाना जाओ, बहुत प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एंजॉय करो, दुनिया एंजॉय करो, तुम्हारी जो इच्छा है करो, एंजॉय करो, चुप करो। तब मैत्री कहती है ये जो सुख है प्यार है ये सब बकवास चीजें हैं, आप भी जहां चले वो भी अपने फायदे के लिए जा रहे हो, क्योंकि आप खुद से प्यार करते हो इसीलिए आप किसी दूसरे से प्यार करते हो। जो शुरू में हमने शुरू किया था यहीं से, जो मुझे खुशी दे मैं उन्हीं से नेचुरली प्यार करने लगता हूं, और कितना भी खून से भी क्लोज हो अगर उसका व्यवहार मुझे मेरे मन के अनुकूल नहीं है, मुझे कष्ट देता है, तो फिर मेरा प्रेम कम होता जाता है। प्रेम और कुछ नहीं, खुद को प्यार करने का नाम है। जब हम खुद को प्यार करते हैं तो फिर खुद को भला सुख पहुंचाने वाले हर वो चीज से भी हम प्यार करने लगते हैं। तुम भी चलते हो अपने मोक्ष के मार्ग पर क्योंकि तुम खुद से प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हें और सुख चाहिए, सुख चाहिए, तुम चलते हो। किसी को घर प्यार है क्योंकि उसको घर में सुख मिलता है, घर से अटैच्ड है। तुम समझदार हो, तुम्हें इनके अटैचमेंट के पीछे भी दुख दिखता है, तुम और स्मार्ट हो, पर हो तो सेल्फिश, तुम अपने सुख के लिए चलते हो। तो मुझे मत बताओ कि मुझे संपत्ति एंजॉय करना है, क्या फिर मुझे जो करना है मैं करूंगी जहां मुझे प्यार मिलेगा। प्यार का मतलब अगेन जहां मुझे अपनी खुशी मिलेगी उन्हीं से मैं चीजों से जुड़ूंगा। तो ये जो दुख भोगने का जो तरीका है वो जितना ज्यादा अटैचमेंट होता है उतना बढ़ता जाता है। मैं खुद से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, मेरे साथ कुछ घटता है तो मुझे ज्यादा दुख होता है, उसके बाद मैं अपने फैमिली मेंबर से, फैमिली मेंबरों में भी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से मैं करता हूंगा, हो सकता है मैं अपने बच्चों के कंपैरिजन पति या पत्नी से ज्यादा करता हूं या करती हूं, या बच्चों को ज्यादा करता हूं पति या पत्नी के कंपैरिजन, तो फिर उनके दुख के हिसाब से मेरे दुख का भी लेवल कम बहुत होता रहेगा, बढ़ता जाएगा, पर पड़ोसी से और कम होगा, अपने शहर में रहने वाले लोगों से और कम दुख होगा उनके दुख में, अपने देश में रहने वालों के दुख से और कम दुख होगा। और सोचिए मान लीजिए हम इस प्लानेट से कहीं दूसरे प्लानेट का भी पता चले, वहां कुछ भी हो जाए, पूरा का पूरा प्लानेट खत्म हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, न्यूज में पता चले तो पता चले, बड़ा बुरा हुआ बोल के दो चार पेग उठा लेंगे और क्या करेंगे। तो इसीलिए मंत्र कहता है ही हु सीज हिज प्रेजेंस, जब यहां ही है तो ही से ही नहीं है, तो एक कमन है, ही शी कोई भी हो, ही शी इट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिज प्रेजेंस इन ऑल एग्जिस्टेंस और सीज द एंटायर एग्जिस्टेंस इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज ए ट्रूली ए वाइज मैन और वुमेन, एंड सच ए पर्सन इज बियॉन्ड अटैचमेंट एंड ग्रीफ। पर यहां जो अटैचमेंट और ग्रीफ का रिलेशनशिप है वो दोनों कजन ब्रदर नहीं है, वो एक बाप है एक बेटा है, एक मां एक बेटी है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। और मां कौन है? अटैचमेंट। बेटी कौन है? शोक। तो अब हमारे पास है, हमसे डिसाइड करें हम किस चीज में कितना ज्यादा अटैचमेंट रखें। अगर रखें तो बी रेडी कि उतना दुख भोगने के लिए भी हम तैयार रहें। अगर दुख पसंद नहीं है तो कितना अटैचमेंट कम करें कि हम कम से कम दुख भोग सकें। अगेन अटैचमेंट कम या अधिक से कोई लेन देन नहीं है कि आप परिवार छोड़ दें जब छोड़ दें, नहीं, आपने जो भी सांसारिक जीवन है उसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं है जब तक आपके अंदर से कोई पुकार ना आए। पर कितनी अटैचमेंट के साथ इनको आप एंजॉय करते हैं उसी से डिसाइडेड होता है कि आपका दुख कितना आपको मिलने वाला है। यही मंत्र का सामान्य भाव है। अगले बार फिर अगले मंत्र के साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।